प्रियल निक को कमरे में बंद कर वहां से जा चुकी थी। निक को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। उसने कबीर को कॉल करके बुलाया और दरवाज़ा खुलवाया। कबीर ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ निक, आपको ऐसे कमरे में किसने बंद कर दिया और प्रियल कहाँ है?
कबीर, प्लीज़ परी को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं वापस कोलकाता जा रहा हूँ। अगर वो कुछ पूछे तो बोल देना कि इमरजेंसी कॉल आया था जिसकी वजह से हम दोनों चले गए।
कबीर ने कहा, ओके निक, लेकिन होप सो आप दोनों की लाइफ में जल्द ही सब कुछ सही हो जाए। ज़रूर आपको प्रियल ने ही इस कमरे में बंद किया होगा, और कौन कर सकता है?
पता नहीं यार, अब सब सही होगा भी या नहीं,
इसे छोड़ो, अपना मैं देख लूँगा। लेकिन प्लीज़ तुम परी का ख्याल रखना, और कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या अपने रिश्ते में आगे बढ़ना हो तो प्लीज़ बताना।
कबीर ने हामी भरी। निक कबीर को बाई बोलकर कोलकाता के लिए निकल चुका था।
अगले दिन शाम को निक कोलकाता पहुंचा। वो घर गया तो एमा के अलावा वहां पर कोई नहीं था। एमा भी उसे अकेले आते देख हैरान हो गई। निक के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। एमा को लगा वो उससे नाराज़ है क्योंकि वो शादी में नहीं जा पाई थी। उसने उसके पास आकर कहा, आई एम सो सॉरी निक, मैं ज़ैन की शादी अटेंड करने नहीं आ पाई।
कोई बात नहीं, निक ने जवाब दिया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? एमा ने पूछा।
निक ने कहा, जीनी और बेबी को मैंने प्रियंक के साथ वापस यूएसए भेज दिया, रोन भी उन्हीं के साथ गया है। अंकित को दो दिन एवा के साथ स्पेंड करने थे तो वो उसे लेकर शिमला चला गया। कल शाम रूपाली ने प्रियल को लखनऊ में देख लिया था, इसलिए मिस्टर मुखर्जी ने उसे छुट्टी पर भेज दिया है। ज़ैन और आलिया वेकेशन पर है, निक ने उन सब के बारे में जानकारी दे दी थी।
एमा ने कहा, मतलब अभी सिर्फ हम दोनों ही हैं जो दो दिन तक अकेले काम करेंगे, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो?
याद है प्रियल ने मुझसे डिवोर्स मांगा था?
एमा ने कहा, तो क्या हुआ, वो बात तो यहीं पर ख़त्म हो गई थी ना, डिवोर्स मांगने और देने में बहुत फ़र्क होता है।
निक ने कहा, बात ख़त्म नहीं हुई थी, उसके बाद रात को प्रियल ने मुझे इमोशनल करके वो पेपर साइन करवा लिए थे। मैंने तब तो उसके कहने पर पेपर साइन कर दिए थे, लेकिन बाद में मैंने बाहर डस्टबिन में फेंक दिए थे।
एमा ने कहा, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है?
पता है कल रात हम दोनों वापस करीब आने ही वाले थे कि अचानक से एक नोटिफिकेशन आया, उसमें हम दोनों के डिवोर्स के पहले ही रंग की डिटेल्स थी। वो पेपर्स किसी ने यूएसए कोर्ट में सबमिट करवा दिए थे।
एमा ने हैरान होकर कहा, इसका मतलब ज़रूर प्रियल गुस्से में तुम्हें छोड़कर वापस चली गई होगी, वो पेपर्स किसने सबमिट करवाए होंगे?
निक ने कहा, बस अब वही तो पता करना है, अपना लैपटॉप लेकर आना, मैं लॉयर को कॉल करके पूछता हूँ कि पेपर कब सबमिट हुए थे और कहाँ से किए गए थे, फिर आईपी एड्रेस से लोकेशन ट्रेस कर लेंगे।
तुम परेशान मत हो, हम देख लेंगे।
एमा ने उसकी पीठ थपथपाई और लैपटॉप लेने के लिए अंदर चली गई। निक ने अपने लॉयर को कॉल किया तो उसने उसे बताया वो पेपर्स उसी रात को सबमिट करवा दिए थे और पेपर्स इंडिया से सबमिट कराए गए थे। तभी उन्हें लगा कि निक ने पेपर पर साइन करा के उसे ऑनलाइन जमा करवा दिया होगा। निक ने लॉयर से हुई बात को एमा को बताया।
एमा ने लैपटॉप में देखकर कहा, ओके निक, हमें इतनी जल्दी किसी का आईपी एड्रेस लीगली नहीं मिल पाएगा, मुझे एक दो सिस्टम हैक करने पड़ेंगे।
निक ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे आईपी एड्रेस से उस लोकेशन का पता लगाना है जिसने ये सब किया होगा। एक बार मुझे पता चल जाए ये सब किसने किया है, फिर तो उसको मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा।
काम डन।
निक के हाँ कहते ही एमा ने लगभग एक घंटे बाद निक को आईपी एड्रेस से लोकेशन निकालकर दे दी थी। इस लोकेशन को देखकर वो दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वो लोकेशन उसी अपार्टमेंट की थी।
एमा ने पूछा, कहीं प्रियल ने तो गुस्से में ये सब नहीं किया?
निक ने कहा, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है एमा, तुम्हें पता नहीं डिवोर्स का नोटिफिकेशन देखकर उसकी क्या हालत हो गई थी, टूट गई थी वो।
हम लोगों में से ऐसा कोई कर नहीं सकता, पेपर्स के सबमिट होने के टाइम से पता चलता है कि वो इंडियन टाइम के हिसाब से रात को सबमिट किए गए थे। हमारे घर के सामने मीरा और उसके डैड रहते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, ये तो वही बता सकता है जिसने ये सब किया था। उनके सच का पता लगाने के लिए हमें उनके लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उन दोनों में से कुछ नहीं किया है ना तो,
निक ने गुस्से में कहा।
एमा ने कहा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, एक पेपर सबमिट होने से कोई डिवोर्स नहीं होता, ये डिवोर्स अपील तो कभी भी कैंसिल करवाई जा सकती है। वैसे तो मैंने लॉयर को बोल दिया है कि वो डिवोर्स एप्लीकेशन अंडू करवा दे, लेकिन एमा, अब मैं वापस प्रियल को कहाँ ढूंढूंगा, पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। मिस्टर मुखर्जी ने उसे एक महीने की छुट्टी दी है, तो इस एक महीने वो कहाँ हो सकती है, किसी को इस बारे में पता नहीं है।
एमा ने कहा, इसमें इतना स्ट्रेस लेने जैसा कुछ नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो कि प्रियल का दीपक मामा के अलावा और कोई रिलेटिव नहीं है और वो अमृतसर में रहते हैं, हो सकता है वो अमृतसर गई हो, और वैसे भी बस एक महीने की ही तो बात है, वो इस मिशन से जुड़ी हुई है तो ज़रूर वापस आएगी, वो वापस मिले तब उसे सब कुछ बता देना।
निक ने उदास होकर कहा, एक महीना फिर से उसके बिना रहना पड़ेगा।
एमा ने उसे सहलाया और शांत करने की कोशिश की।
निक ने फिर पूछा, यहाँ तो सब ठीक था ना, इन लोगों को मुझे पर शक तो नहीं हुआ होगा ना?
एमा ने कहा, हाँ यहाँ सब ठीक है, तेरे चक्करों में मैं बताना ही भूल गई, कल जन्नत बाजार पर रेड मारने की पूरी तैयारी हो चुकी।
उन लोगों ने इलीगल तरीके से कुछ लड़कियों को बॉर्डर पार करवाकर दूसरे देश में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वहां के ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया था। अब तक तो हम उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन से जुड़े ही सबूत मिले थे, लेकिन अब तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में लंबा जाएगा। पर अफसोस कि हम ये सब अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। किसी भी मिशन को सीक्रेटली हैंडल करने का सबसे बड़ा नुकसान होता है, एमा ने कहा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, हम जिस काम के लिए आए थे उसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज पूरा हो जाएगा, निक ने कहा। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रोजेक्ट जन्नत कंप्लीट हो गया तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। बाकी यहाँ पर और भी रेड लाइट एरिया है जिन पर हमें काम करना होगा। यार मैं पिछले 3 महीनों में कोलकाता रहते हुए बोर हो गई, कम से कम अब किसी और जगह जाने को तो मिलेगा, निक ने कहा। अब जब सुनहरी और रूपाली पकड़ी जाएंगी तो प्रियल को भी उनसे कोई खतरा नहीं होगा। मिस्टर मुखर्जी को बोलूंगा कि वो प्रियल की छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला ले, ताकि मुझे उसे मिलने का इंतजार नहीं करना पड़े, एमा ने फिंगर क्रॉस करके कहा। होपिंग फॉर द बेस्ट, चलो डिनर करके अब तक मिले प्रूफ को अच्छे से असेस कर लेंगे, निक ने उसकी बात पर हामी भरी। निक और एमा काम पर लगे थे, लेकिन निक का ध्यान अभी भी उसी में लगा था कि वो पेपर्स किसने सबमिट करवाए होंगे और क्यों। उनकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, यहाँ तो किसी को पता भी नहीं था कि वो और प्रियल शादीशुदा थे। निक और एमा सारी रात काम कर रहे थे। एमा थक कर सो गई थी, जबकि निक अभी भी इस बात को लेकर परेशान था कि कोई उसे प्रियल से क्यों अलग करना चाहेगा। एक तो सारी रात काम करके इतनी थकान हो गई है, ऊपर से नींद भी नहीं आ रही। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक पर चला जाता हूँ, ताकि थोड़ा तो फ्रेश फील हो, निक ने सोचा।
जैसे ही निक घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने से मीरा के बाबा भी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। जब वे वहां से चले गए तो निक दबे पांव उनके घर में गया। वहां जाकर उसने देखा कि मीरा घर की सफाई करने में बिजी थी। मीरा ने निक को देखकर कहा, अरे वाह, आज तो आप हमारे घर आए हैं, बोलिए कुछ काम था क्या? आप आइए ना अंदर, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, आप कॉफ़ी पियेंगे या चाय या कुछ और लेकर आऊँ? मीरा उसे अपने घर पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। निक ने हिचकिचाते हुए कहा, मीरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, तो क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ प्लीज़? मीरा ने कहा, अरे आप प्लीज़ क्यों बोल रहे हैं, मैं अभी अपना लैपटॉप लेकर आती हूँ। निक ने कहा, इफ़ यू डोंट माइंड मीरा, लेकिन वो क्या मुझे तुम्हारा लैपटॉप मिल सकता है? एक्चुअली तुम्हारे बाबा का लैपटॉप यूज़ करूँगा तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। मीरा ने कहा, हाँ हाँ मैं आपको अपना ही लैपटॉप देती हूँ, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आई। मीरा निक को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि वो ये भूल चुकी थी कि उसने अपने ही लैपटॉप से निक और प्रियल के डिवोर्स पेपर सबमिट करवाए थे। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप निक को ला कर दिया। निक ने कहा, मीरा मैं अपना काम खत्म कर लूँ, क्या तब तक मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? मीरा ने कहा, मैं आपके लिए कॉफ़ी के साथ कुछ और भी बना कर लाती हूँ, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, ऊपर से बाबा भी घर पर नहीं है, मेरा मतलब मुझे ही मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी ना, कहकर वो किचन में जाने लगी। फिर उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, आप आराम से अपना काम कीजिए, मैं अभी आई। निक ने सोचा, थैंक गॉड चली गई, इसके सामने तो मैं कुछ पता नहीं कर पाता। मीरा किचन में निक के लिए कॉफ़ी और स्नैक्स बना रही थी, तो बाहर निक ने कुछ ही मिनटों में पता कर दिया था कि वो पेपर्स मीरा ने ही सबमिट करवाए थे। उसे देखते ही निक इतना ज़बरदस्त गुस्सा हो गया था कि उसने लैपटॉप उठाकर फेंक दिया था। लैपटॉप गिरने की आवाज़ सुनकर मीरा किचन से दौड़कर बाहर आई। मीरा ने कहा, क्या हुआ शोना, ये लैपटॉप? निक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, मेरे और प्रियल के डिवोर्स पेपर्स तुमने ही सबमिट करवाए थे ना उस रात? मीरा ने कहा, ओ तो आपको सब पता चल गया, चिल, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, अब मुझे बहाने बनाकर आपके घर नहीं आना पड़ेगा। आपकी बीवी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, ज़रूर उसने आप पर कोई काला जादू करवाया होगा आपको फंसाने के लिए, पर मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। बोलते हुए वो निक के करीब आई और कहा, मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। निक ने पीछे हटते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? मैं पहले से शादीशुदा हूँ और प्रियल से बहुत प्यार करता हूँ, डिवोर्स तो दूर की बात है, मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। मीरा ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, ये तो आप सरासर झूठ बोल रहे हैं शोना, कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, पूरे 5 साल रहे हैं आप उसके बिना, अब तो आदत भी हो गई होगी। उसकी बात सुनकर निक चौंक गया। उसने उससे पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? मीरा ने कहा, जब आपसे मोहब्बत हो ही गई तो आपके बारे में पता लगाना तो बनता है ना कैप्टन निक? उसने निक को कसकर गले लगाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको दुनिया की सारी खुशी दूंगी, बच्चे चाहिए ना आपको, उस वो प्रियल तो वैसे भी किसी काम की नहीं है, वो तो आपको बच्चे भी नहीं दे सकती, अच्छा हुआ यहाँ से चली गई और पीछा छूटा उससे। मीरा की बातें सुनकर निक को एक के बाद एक झटके से लग रहे थे। वो प्रियल और उसके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन उसे ये सब कैसे पता चला? उसकी बातों से निक को साफ समझ आ रहा था कि मीरा का मानसिक संतुलन सही नहीं था। निक ने मीरा को धकेलते हुए कहा, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, शायद तुमने मेरी बातों को गलत समझ लिया। देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता है, लेकिन तुम मुझसे बहुत छोटी हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, तुम्हारा मैंने तो प्रियल के अलावा किसी और लड़की की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मीरा ने कहा,
तो क्या हुआ? प्यार उम्र नहीं देखता, आप मेरी फीलिंग्स को समझिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप जानना चाहते हैं ना मुझे आपके बारे में कैसे पता? मुझे आपके बारे में मेरे किसी सोशल मीडिया के फ्रेंड से पता चला। दरअसल वो यूएसए के उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है जहाँ आप ट्रेनिंग देते हो। देखिए, अब तो मैंने सब कुछ भी बता दिया। जब आपका और प्रियल का डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद? निक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ये कभी नहीं होगा, मीरा ने कहा। मत भूलिए, वो आपको कभी बच्चे नहीं दे पाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो सब कुछ है। उसकी हरकतें बच्चे जैसी हैं, तो मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, शायद बच्चों की भी नहीं। और तुम्हें कैसे पता चला ये सब? मीरा ने कहा। मैंने उस दिन सुन लिया था जब उस आदमी ने बोला कि आपकी पत्नी अब माँ नहीं बन सकती। निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा को कैसे समझाए। वो उससे जितना दूर जाने की कोशिश करता, मीरा उससे उतना ही करीब आने की कोशिश कर रही थी। उससे पीछा छुड़ाने के लिए निक वहां से जाने लगा, तो मीरा जबरदस्ती उसके करीब आकर उसके होठों पर किस करने लगी। खुद को उससे दूर करने की कोशिश में निक ने उसे खुद से दूर धक्का दिया कि उतने में चंद्रकांची वहां आ गए। निक ने गुस्से में कहा, संभालिए अपनी पागल बेटी को। चंद्रकांची ने कहा, मीरा बेटा सब ठीक तो है ना, तुम यहाँ नीचे कैसे गिरी? उन्होंने मीरा को संभाला। उसके बाद निक की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का देने की? मीरा ने कहा, बाबा बाबा आप गलत समझ रहे हैं, इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, मैं गिर गई थी। निक ने कहा, आप सही समझा अंकल, मैंने इसे धक्का दिया था। लेकिन अब एक बात आपको भी समझनी होगी कि मीरा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप उसे घर में बंद रखकर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब ये अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होती जा रही है। पता भी है इसने क्या किया है? इसने अपने पागलपन में आकर मेरे और मेरी वाइफ का डिवोर्स फाइल कर दिया था। मीरा ने कहा, आप भी तो उनसे तलाक लेना चाहते थे, एक बार आपका तलाक हो जाएगा तो हमारी शादी हो जाएगी, है ना बाबा? चंद्रकांत जी मीरा की बात सुनकर हैरान थे और साथ ही दुखी भी, क्योंकि मीरा फिर से वही पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। निक वहां से जाने लगा तो उसने फिर से निक का हाथ पकड़कर उसे वहीं हुक लिया। चंद्रकांत जी को मीरा की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे कसकर चांटा लगा दिया। चंद्रकांत जी के थप्पड़ मारने के बाद मीरा और भी अपना आपा खोने लगी थी। चंद्रकांत जी ने कहा, आप प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। सही कहा आपने, मीरा को सही करने के लिए अब उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। चंद्रकांत जी ने निक की मदद से डॉक्टर को बुलवाया और डॉक्टर के हिसाब से मीरा का ट्रीटमेंट करवाने का फैसला लिया। निक वापस घर आ चुका था और बाथरूम में था। इसी बीच एमा भी उठ चुकी थी और उसने सुना बाथरूम में किसी की उल्टियां करने की आवाजें आ रही थी।